तीसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, भक्ति के लिए पात्रता। हम ये चर्चा कर चुके हैं कि भक्तों के संघ के द्वारा जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उनसे वास्तव में भक्ति के प्रति रुचि जागृत हो जाती है और ये रुचि वो पात्रता है जो कि व्यक्ति को उत्तम भक्ति के लिए अधिकारी बनाता है। और कल के श्लोक में हम देख चुके हैं, कौन सा था वो श्लोक? यदृच्छया मत कथा दो जात शब्द। तो इसका क्या मतलब है? ये पहला लक्षण है ना, क्या है लक्षण? अति भाग्य से मेरे प्रति या मेरे कथाओं आदि के कथाएं आदि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो ये पहली बात है जो कि श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, वो श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए और वो अति भाग्य से होता है। अति भाग्य का मतलब है पूर्व जन्म के संस्कार जो किससे उत्पन्न होते हैं? साधु संघ से। दूसरा लक्षण क्या है? न निर्वजनः, मतलब अति निरासक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि कौन होते हैं? ज्ञान योगी। वह हर चीज को नकारते हैं, मना करते हैं कि नहीं ये सब भौतिक है, ये सब माया है, हम नहीं लेंगे। परंतु भक्त क्या कहते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भक्त के वैराग्य में और ज्ञान योगी के वैराग्य में अंतर कौन सा है? ज्ञान योगी के वैराग्य को क्या कहते हैं? फल्गु वैराग्य। इसे फल्गु क्यों कहते हैं आपको पता है? फल्गु कहाँ से आया?
फल्गु नदी है, गया है, उसमें पानी अंदर चलता है, ऊपर से दिखती है।
तो क्या होता है?
मतलब अंदर से मिथ्या जा रहे हैं, ऊपर से
साधु रहे
हैं।
ऐसा नहीं है, मतलब जो ऊपर से लगता है वैसा नहीं है। हाँ, एक दृष्टि से देखा जाए तो ये वैराग्य झूठा है, ये सही है, क्योंकि ये चीजें भगवान की है और भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो बाहर से ये तो वैराग्य लगता है। प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं बंदरों का वैराग्य होता है। बंदर भी बड़े वैराग्य होते हैं ना, उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। मरकट वैराग्य क्यों होता है? बंदर के कोई हिंदू का मकान वगैरह होता है, घर होता है उनका, कोई बैंक वगैरह कुछ होता है, कोई पैसे यदि क्या घर रसोई घर वगैरह कुछ होता है, कहाँ रहते हैं? हर पेड़ एक दिन इस पेड़ में, कभी एक दिन नहीं, थोड़े क्षण एक पेड़ पर रहते हैं, दूसरे क्षण दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं, यहाँ पर देख ही रहे हैं। परंतु हालांकि इतना विरक्त तथा कथित विरक्त जीवन जी रहा है भारी दृष्टि से, लेकिन पूरा भोग में लगा हुआ है हमेशा। तो ये तीसरे प्रकार का वैराग्य है जो मरकट वैराग्य है, वो भी झूठा वैराग्य है। केवल बाहरी दृष्टि से वैराग्य रखना लेकिन फिर भी भोग के कार्य में लगे रहना, ये मरकट वैराग्य। लेकिन यहाँ मरकट वैराग्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फल्गु वैराग्य की बात हो रही है, जहाँ लोग उन चीजों को नकारते हैं या त्याग करते हैं जिनका इस्तेमाल भले भगवान की सेवा में किया जा सकता है। अभी बिना देखे वो श्लोक बोलिए, एक ये पाठ था ना आपके लिए। बहुत अच्छा, क्या मतलब इसका?
ये बुद्धि रखना कि जो हरि संबंधी वस्तु है वो भौतिक है, और मोक्ष भी परित्याग, मोक्ष भी मतलब जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, परित्याग
मोक्ष भी परित्याग आगे त्याग करते हैं,
फलतू वैराग्य करते हैं, उनका वैराग्य पूर्ण नहीं है क्योंकि
वो कृष्ण के जो कृष्ण की वस्तु है उसको, मतलब जो वास्तविक में जो भौतिक वस्तु है सारे वस्तुओं को भौतिक ही मानते हैं, वो यही समझते कि कृष्ण के संबंध में अपना करते हैं।
तो परित्याग का महत्व क्या है यहाँ पर? परित्याग मुमुक्षु भी परित्याग हो,
वो वैराग्य सारी चीजों से वैराग्य करना चाहते हैं।
परित्याग मतलब छोड़ देना, किन चीजों को छोड़ते हैं?
कृष्ण हरि संबंध,
हरि संबंधी वस्तु न, मतलब जो हरि के संबंध में वस्तुएं हैं उनको भी छोड़ते हैं, जो कि हरि के सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है उनको भी छोड़ते हैं। क्या समझ कर छोड़ते हैं? प्रापंचिकतया बुद्धिया, ये भी भौतिक है, ये माया है, ये बुद्धि से इस मति से वो उन चीजों को भी त्यागते हैं जो कि भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे परित्याग को, ऐसे वैराग्य को फल्गु वैराग्य कहते हैं, सच्चा वैराग्य नहीं है। तो न निर्विण्ण, तो इस प्रकार का वैराग्य हमें नहीं होना चाहिए। जो भक्त का वैराग्य है वो तो होना चाहिए, भक्ति में भी वैराग्य होता है ना, भक्ति में किस प्रकार का वैराग्य होता है? हाँ, लेकिन फिर भी हाँ युक्त वैराग्य है कि हरि के प्रति संबंध वस्तु है उनका, कृष्ण संबंध है उसको इस्तेमाल करना। लेकिन हम लोग भी वैराग्य क्या करते हैं? हम लोग भी चार नियमों का पालन करते हैं, हम लोग भी कई ऐसी चीजें हैं दुनिया में जिनको त्याग करते हैं, लेकिन क्यों त्याग करते हैं? क्योंकि वो भगवान के संबंध में नहीं है। तो भक्ति के जीवन में भी वैराग्य है, परंतु वो ज्ञान योगी के वैराग्य के बराबर नहीं है, उसके समान नहीं है। तो भक्तों की वैराग्य, भक्तों के वैराग्य को युक्त वैराग्य कहते हैं। तो क्या है वो युक्त वैराग्य? श्लोक बताइए। तो क्या मतलब इसका? कौन बताएंगे? श्लोक को सबने बोल दिया।
ऐसा कोई कार्य न हो जो कृष्ण से संबंधित,
शब्द शब्दों से बताएंगे। हाँ शुरू कीजिए। हाँ सबसे पहली बात अनासक्तस्य विषयान, विषयों से अनासक्त होने वाला जो आदमी है। हाँ, और यथा अर्हम उपयुज्यतः। हाँ क्या मतलब?
जो जो हम अर्जित करते हैं उन सबको भगवान की सेवा में लगाना।
बहुत अच्छा।
निर्बंध कृष्ण संबंध
है, इनको कृष्ण के संबंध में देखना है ना, कृष्ण के संबंध में देख के फिर उनका उनकी सेवा कृष्ण के लिए सेवा में इस्तेमाल करना, और ऐसा करने से किस प्रकार का वैराग्य होता है? युक्त वैराग्य। अगर कोई व्यक्ति कहे कि कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन उसका भोग कर रहा है, तो क्या वो युक्त वैराग्य होता है? क्यों? अनासक्त से विषय। तो इसलिए सबसे पहले ही रूप गोस्वामी ने कह दिया है कि विषयों के प्रति अनासक्त होकर फिर अन्य चीजों को जो कृष्ण के संबंध में देखकर इस्तेमाल किया जाता है तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। ठीक है, न तो ज्यादा आसक्त होना चाहिए और न ज्यादा निरासक्त होना चाहिए। तो ये भक्ति के लिए योग्यता है। जो अति निरासक्त है वो कौन से पथ पे जाएगा? कौन से पथ के लिए योग्य है? ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग के लिए है ना, ज्ञान में और ज्ञान मार्ग में अंतर होता है। क्या अंतर है? और स्पष्टीकरण चाहिए, इसकी परिभाषा हुई है ना? कब हुई है परिभाषा?
ज्ञान कर्म।
बहुत अच्छा, ज्ञान कर्म, ज्ञान कर्म आदि अनाहतम। तो ज्ञान शब्द की परिभाषा कैसे की गई थी उस समय? आपने सही बताया, बोलिए। हाँ, जो
को लेके
जो इस निष्कर्ष पर हमें पहुंचाता है कि परम सत्य केवल निराकार है और हमें लीन होना है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचाने वाला जो ज्ञान है या जो पद्धति है उसे ज्ञान कहते हैं। परंतु हम लोग भी भक्ति मार्ग में ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, तो फिर क्या ये ज्ञान वर्जित है? नहीं, वो ज्ञान योग नहीं। जो हम अभी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ज्ञान ही प्राप्त कर रहे हैं ना, तो फिर ये क्या ज्ञान जरूरी है? ये भी वही ज्ञान है जिनको त्याग करना चाहिए? कृष्ण के संबंध में जो ज्ञान है उसको त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि वो आवश्यक है, क्योंकि वो इस निष्कर्ष पर हमें पहुंचाता है कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, उनकी भक्ति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो ज्ञान का मतलब हमें समझ लेना चाहिए, तो न अति आसक्त होना न अति निरासक्त होना। तो ये हुई योग्यता या पात्रता का विचार भगवान कृष्ण के शब्दों में उद्धव गीता से। अब आगे चल के रूप गोस्वामी कहते हैं कि तीन प्रकार के अधिकारी व्यक्ति हैं, किसके लिए? उत्तम भक्ति के लिए। तो ये तीन श्रेणियां हैं के बारे में आप पहले भी सुन चुके हैं। कौन से हैं तीन श्रेणियां, पढ़िएगा ऊपर से पहले पढ़िए।
वैदिक साधन भक्ति के लिए तीन प्रकार के अधिकारी व्यक्ति, पहला है उत्तम अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी, तीसरा
कनिष्ठ अधिकारी। किस चीज के लिए अधिकारी व्यक्ति हैं, बिना देखे बताइए। वैदिक साधन भक्ति के लिए, वैधि भक्ति के लिए। इसका मतलब है कि उत्तम अधिकारी वैधि के स्तर में है, आप समझ रहे हैं? ये प्रेम भक्ति के स्तर की उत्तम भक्त की बात नहीं हो रही है, आप समझ रहे हैं? ये केवल वैधि के स्थान में है। वैधि भक्ति के लिए जो अधिकारी व्यक्ति है, और इसकी परिभाषा क्या है, चर्चा क्या है, हम अभी आगे चल के करें। यहाँ रूप गोस्वामी स्पष्टता बताते हैं कि वैधि साधन भक्ति के लिए कौन अधिकारी व्यक्ति हैं, या कौन व्यक्ति हैं जो वैधि भक्ति करते हैं या कर सकते हैं। तो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। श्रेष्ठ कौन सा है? उत्तम अधिकारी। ठीक है, घुमाइए। अभी तीनों की परिभाषा, तीनों का वर्णन ठीक है। अब तीनों के गुण होते हैं, तीनों के लक्षण होते हैं। तो उत्तम अधिकारी कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है, ये विभाजन कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जा सकता है कि कौन कनिष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है? कोई तो आधार होना चाहिए, कोई पॉइंट होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए जिसके ऊपर ये निर्णय किया जा सके। हाँ, तो पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है।
गोस्वामी ने कहा है, वैधी भक्ति वो है जो कि शास्त्रों के नियमों पर आधारित है, स्वाभाविक आकर्षण पर नहीं। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि इसका निष्कर्ष यह है कि किसी व्यक्ति के भक्ति का मूल कारण है शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा है।
वैधी भक्ति की परिभाषा में कौन से लक्षण थे, अब याद कीजिए। वैधी भक्ति की परिभाषा की थी ना, क्या था उसमें? स्वाभाविक प्रेम न होते हुए गुरु और शास्त्रों के आदेशों का पालन कैसे करना, बिना विरोध किए हुए, बिना तर्क किए हुए करना। ठीक है, तो मूल बात क्या है कि हम शास्त्रों के आधार का और शास्त्रों के आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो वैधि भक्ति का आधार है शास्त्रों में श्रद्धा, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, नहीं तो हम क्यों तैयार होंगे आदेशों का पालन करने के लिए। शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है इसलिए हमें करना चाहिए, गीता में ऐसे कहा है, भागवत में ऐसे कहा है, तो हमें करना है। तो इसलिए वैधि भक्ति के लिए आधार है भक्ति के शास्त्रों में श्रद्धा, तो जिसकी ज्यादा श्रद्धा है, जिसकी श्रद्धा परिपक्व है, अटल है, वो और ऊंचा भक्त माना जाएगा। स्वाभाविक है ना, जिसकी श्रद्धा कम है, कोमल है, वो कनिष्ठ माना जाएगा, है ना, स्वाभाविक है। तो इस आधार पे विभाजन किया गया है, किस आधार पर? श्रद्धा किसके ऊपर? श्रद्धा शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा। तो इस आधार पे अब ये विभाजन किया जाएगा। ठीक है, आपने लिख लिया, घुमा लीजिए। हाँ तो पढ़िएगा।
इसीलिए भक्ति करने वालों का विभाजन इन दो बातों के आधार पर किया गया है। पहला है शास्त्रों का ज्ञान, दूसरा शास्त्रों में श्रद्धा।
क्योंकि ये शास्त्रों पर ही आधारित है, तो शास्त्रों का ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए और उस ज्ञान में श्रद्धा होनी चाहिए। केवल शास्त्र ज्ञान होने से क्या फायदा? ऐसे कितने विद्वान हैं, तथाकथित विद्वान हैं, संस्कृत के पंडित हैं, अनेक वेदों को पुराणों को पढ़ चुके हैं, पढ़ाते हैं दूसरों को विश्वविद्यालय आदि में, परंतु श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। एक विद्यार्थी हमें मिले थे, एक माता जी लड़की अभी ये संस्कृत में कर रही है कहीं दूसरे जगह, और वो कह रही थी कि जितने भी उनके अध्यापक हैं जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जब उनको शास्त्र पढ़ाने पड़ते हैं, संस्कृत है बीए में तो नहीं चाहिए, तो कहते हैं कि जितने भी अध्यापक हैं वो कहते हैं कि ये तो केवल आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, वैसे हमें कुछ श्रद्धा नहीं है, ये शास्त्र में क्या लिखा है कुछ श्रद्धा नहीं है, केवल ये हमारे लिए नौकरी है, आपके लिए भी आगे चल के आपको नौकरी मिल सकती है या आपको डिग्री मिल जाएगी, इसलिए आपको पढ़ना है, संस्कृत भाषा अच्छी तरह से आपको समझ आना चाहिए, लेकिन शास्त्रों की बातें क्या है इसमें विश्वास नहीं है। तो इसलिए दोनों बातें चाहिए, शास्त्रों का केवल ज्ञान हो पर तो विश्वास न हो तो क्या फायदा, और केवल शास्त्रों में विश्वास हो पर शास्त्रों में क्या लिखा नहीं मालूम तो किसके ऊपर क्या विश्वास करेंगे, कोई कुछ भी कहेगा विश्वास कर लेंगे। तो दोनों चीजें होना जरूरी है। कौन सी है वो दो चीजें? शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों में श्रद्धा। तो जिसकी ज्यादा श्रद्धा है, जिसका ज्यादा ज्ञान है शास्त्रों का, वो
उत्तम,
और जिसका कम है
कनिष्ठ।
सरल है ना? ठीक, अभी उत्तम अधिकारी की परिभाषा तो आगे पढ़िए, इस अध्याय के तीसरे अनुच्छेद को पढ़िए। कोई
भक्तों के तीन श्रेणियां की जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी का भक्त का वर्णन तीस रहता है, और संबंधित शास्त्र के अध्ययन तथा इन शास्त्र के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अति उपयुक्त होता है, और भक्ति की विधियों पर निर्णात्मक रूप से विचार कर सकता है।
वो पूर्ण के साथ, तो इसको फिर से दोहराइए। आप अभी और कोई बोलिए। ये पहले लक्षण है उत्तम अधिकारी के,
संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में वे अति कठोर होते हैं, और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकते
हैं।
वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण की पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है, और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु के ज्ञा का पालन भी करता है। इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर प्रथम श्रेणी का भाग माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भाग कभी भी आचार्य के नियमों से विचलित नहीं होता, और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझ कर उन्हें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति हमारा अभिप्राय शास्त्र समझकर चतुर्भुक्ति से होता है। प्रथम शरीर का भाव समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों अर्थात थोड़ा ज्ञान वाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भाव माना जा सकता है।
बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने समझाया है। मूल क्या है? प्रौढ़ संकल्प जिसकी भक्ति में है वो उत्तम है। प्रौढ़ मतलब पक्का, दृढ़, दृढ़ से भी ज्यादा, बल्कि दृढ़ से भी ज्यादा है। प्रौढ़ दृढ़ से ज्यादा स्ट्रांग शब्द है। तो अभी बिना देखे हुए बताइए उत्तम अधिकारी के बारे में कौन से पॉइंट्स बताए हैं प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, एक एक करके बताइए। हाँ,
शास्त्रों के आधार पर तर्क पटु
है, तर्क करने में शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में पटु रहता है, लेकिन वो जब तक तब तक नहीं कर पाएगा जब तक स्वयं शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। तो कैसा है उन शास्त्रों का ज्ञान, क्या लिखा है यहाँ पर? श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी तरह से शास्त्रों को जानता है और शास्त्रों के निष्कर्ष को अच्छी तरह से निर्णायक दृष्टि से वो प्रस्तुत कर सकता है।
वो अच्छी तरह से जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है।
बहुत अच्छा, कृष्ण परम सत्य है, उनका कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। हाँ,
गुरु के आदेशों का वो काफी सही ढंग से पालन करता है और दूसरों को भी वह ज्ञान प्रदान कर सकता है।
मतलब उसने भी पहले इस अधिकृत पद से ज्ञान स्वीकार किया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कहीं से वो आ गया टपक पड़ा बिना कोई संप्रदाय के, बिना कोई मैं गुरु बन गया और फिर शुरू हो गया, है ना? आजकल यही देखा जा रहा है ना समाज में, ना कोई संप्रदाय है ना कुछ है, कोई अचानक कोई गुरु बन गए, प्रसिद्ध हो गए और अपनी परंपरा चालू कर दी, ऐसा नहीं। तो वो उत्तम अधिकारी नहीं कहलाएगा, एक प्रामाणिक संप्रदाय चाहिए, उसके भी कोई गुरु चाहिए, उन्होंने भी वो भी अनुयायी हुए होने चाहिए प्रामाणिक व्यक्ति के। आगे आचार्यों के वचनों पर निष्ठा होती है, ठीक है, और
निपुण होता है वह
किन चीजों में?
जो बलवान होते
हैं, विपक्षी
जो होते बलवान होते हैं, लेकिन उनको जीतने में वह निपुण होते हैं।
किस प्रकार से जीतते हैं? क्या करते हैं शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करते हैं? किस प्रकार से तर्क प्रस्तुत करते हैं? यहाँ क्या लिखा गया? शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होते हैं और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत पटु भी होते हैं और सारे शास्त्रों का निष्कर्ष भी अच्छी तरह से जानते हैं और विपक्षी का सामना कैसे करना चाहिए, भले वो विपक्षी बलवान क्यों न हो फिर भी उसके तर्क का खंडन करने में सक्षम होते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण है यहाँ पर। उत्तम अधिकारी के बारे में रूप गोस्वामी इस प्रकार से परिभाषा देते हैं, शास्त्र युक्तो च निपुणः,
शास्त्र युक्तो च निपुणः,
सर्वथा दृढ़ निश्चयः,
सर्वथा दृढ़ निश्चयः,
सर्वथा दृढ़ निश्चयः,
सर्वथा दृढ़ निश्चयः,
प्रौढश्रद्धोऽधिकारीयः, भक्ता उत्तमो मतः,
भक्ता उत्तमो मतः।
बोलिए,
शास्त्रयुक्तो च निपुणः,
सर्वथा प्रयोरे
शास्त्रे युक्तो च निपुणः
शास्त्रे युक्तो च निपुणः
सर्वथा दृढ़ निश्चय
सर्वथा दृढ़ निश्चय
गौरशब्दो अधिकारीय
गौरशब्दो अधिकारीय
मत्ता उत्तमो मत्ता
मत्ता उत्तमो मत्ता
अंत में क्या है विसर्ग का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए मत मत यह निश्चय निपुण फिर से आप बोलिए विसर्ग का सही उच्चारण करिए
शास्त्रे युक्त च निपुण
शास्त्रे युक्त च निपुण
सर्वथा
दृढ़ निश्चय
मतलब बताइए शब्दार्थ से अभी आप साधारण अभी आप सब पंडित बन गए सब लोगों का विश्लेषण करने में आप पटु हो गए हैं
शास्त्र
युक्तो च निपुणः
युक्ति पूर्वक
शास्त्रों के अध्ययन में ठीक है और हाँ और युक्ते
युक्ति पूर्वक
युक्ति में भी निपुण है दो चीजों में निपुण है शास्त्र युक्तो च तो शास्त्रों में भी शास्त्रों के अध्ययन में बड़ा निपुण है शास्त्रों को पढ़ चुका है शास्त्रों को जानता है उनका निष्कर्ष जानता है साथ साथ युक्ति में भी लॉजिक तर्क में भी बड़ा निपुण है किस प्रकार का तर्क नीति नीति वाला तर्क
नहीं
ज्ञान मार्ग वाला तर्क
नहीं
किस प्रकार का तर्क
भक्ति
भक्ति के सिद्धांतों के ऊपर आधारित तर्क जो शास्त्रों के आधार पर तर्क होता है उसमें निपुण होता है ठीक है शास्त्र निपुण शास्त्र युक्तो च निपुण है तो निपुण है वो ये पहला लक्षण बताइए क्या है पहला लक्षण शास्त्रों के अध्ययन
में
और युक्ति युक्ति से क्या करना है प्रस्तुत करना भक्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना और विपक्षियों का के मत का खंडन करने में बड़ा निपुण है ऐसे विपक्षी सिद्धांतों का खंडन करना कब संभव है जब कोई शास्त्रों में निपुण है तब कर पाएगा ना अन्यथा नहीं हो पाएगा तो इसलिए शास्त्र युक्तो दोनों साथ साथ केवल शास्त्रों को पढ़ लिया है लेकिन सही तरह से युक्ति से उनको प्रस्तुत नहीं कर सकता तो वो भी उत्तम नहीं होता ठीक है ये पहला लक्षण दूसरा लक्षण बताइए सर्वथा दृढ़ निश्चय अर्थात हर अवस्था में उसका निश्चय दृढ़ होता है किस बारे में निश्चय साधन और तत्व के बारे में निश्चय होता है उसके मन में दृढ़ निश्चय ठीक है और तीसरा लक्षण प्रौढ़ श्रद्धा तो प्रौढ़ श्रद्धा किसमें श्रद्धा शास्त्रों में और शास्त्रों के सिद्धांतों में श्रद्धा कैसी है बड़ी परिपक्व है अटल है कोई डावाडोल नहीं कर सकता उसे वो सामने खड़े होकर उत्तर देगा और विपक्षी सिद्धांतों का खंडन करेगा ठीक है फिर आगे उत्तम मत तो ये उत्तम भक्त उत्तम अधिकारी कहलाता है ठीक है मैं तो उसी श्लोक का एक विश्लेषण किया गया है आप तो जान चुके हैं, चर्चा आप ही ने बताए तीनों वर्ग हैं। अभी पढ़िएगा उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या है। वो लक्षण
शास्त्र युक्त च निपुण,
पहला है कभी बताइए क्या है। कभी पढ़िए क्या मतलब है।
शास्त्रों के अध्ययन में और शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में निपुण,
ठीक है ना, स्पष्ट है। तो आप सब उत्तम अधिकारी बनना चाहते हैं ना। भक्ति शास्त्री मतलब शास्त्री हो गया। सर्वथा दृढ़ निश्चय क्या मतलब।
तत्व और साधन की जानकारी से दृढ़ निश्चय,
तत्व की जानकारी होने से और साधन करने से। ऐसा नहीं कि केवल उनको पुस्तकीय ज्ञान है, साधन भी करते हैं, साधन किया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल पुस्तकीय ज्ञान शास्त्रों का है और उससे वो उत्तम अधिकारी बन गया, नहीं। साथ साथ साधन तत्व दोनों होने चाहिए और इससे उनकी उनका निश्चय दृढ़ होता है इस पथ में। तीसरा
प्रौढ़ श्रद्धा।
प्रौढ़ श्रद्धा क्या है ये।
शास्त्रों के वचनों में परिपक्व श्रद्धा।
शास्त्रों के वचनों में परिपक्व श्रद्धा, तो ये है उत्तम अधिकारी की पहचान। साथ साथ में श्रील प्रभुपाद जी ने और भी थोड़े पॉइंट्स यहाँ बताए हैं जो कि इस श्लोक में नहीं है, परंतु हम समझ सकते हैं कि ये स्वाभाविक है। कौन सी चीजें हैं जो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं जो कि विशेष करके यहाँ पर नहीं।
सिर्फ कृष्ण
को अपने प्रेम और पूजा का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, ठीक है, वो तो इसमें आ जाता है।
गुरु से प्रशिक्षण लेंगे,
हाँ, पहले भी उन्होंने गुरु से प्रशिक्षण लिया हुआ होना चाहिए और आज्ञाकारी शिष्य हुए होने चाहिए और इस प्रकार से अच्छी तरह से प्रशिक्षित होकर वो आगे चल के वो भी स्वयं गुरु बन सकते हैं और कभी अधिकारी व्यक्तियों के आदेश से हटते नहीं है। और ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी कभी शुष्क ज्ञान में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। तो इस श्लोक के साथ जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये आपका गृह पाठ है। तो यह अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे शब्दों में जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। का संकल्प प्रौढ़ है, श्रद्धा संकल्प, श्रद्धा प्रौढ़ है तो संकल्प भी प्रौढ़ होना चाहिए। अच्छा, अब आई बात मध्यम अधिकारी की। तो मध्यम अधिकारी के बारे में क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, कुल पढ़िएगा।
द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं, वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अति निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास होता है। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भर रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्ष्य है।
तो अपने शब्द में बताइए मध्यम अधिकारी की क्या पहचान है। हाँ,
शास्त्रों के आधार पर तर्क करने में निपुण नहीं रहता,
निपुण नहीं रहता,
नहीं
रहता, लेकिन विश्वास दृढ़ है। उत्तम अधिकारी जितना प्रौढ़ नहीं है परंतु फिर भी दृढ़ है और तर्क प्रस्तुत करने में कभी सफल हो जाता है कभी नहीं। कभी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता बिल्कुल, कभी हार जाता है कभी जीत जाता है। फिर भी शास्त्र में दृढ़ विश्वास रखता है, डावाडोल नहीं हो जाता है। ठीक है, हाँ तो अभी और चर्चा करते हैं, आगे बढ़िए। तो मध्यम अधिकारी की परिभाषा क्या है रूप गोस्वामी के अनुसार? यह शास्त्रादिश्व निपुणः श्रद्धावान् सतु मध्यमः। बोलिए। और एक कोई
यह शास्त्र निपुणः
बताए थे ना, न न और अ का न होता है ना, तो फिर से बोलिए।
यह शास्त्र विश्व निपुणः श्रद्धावान् सतु मध्यमः
श्रद्धावान् सतु मध्यमः।
हाँ तो इसका मतलब बताइए।
वह मध्यम अधिकारी है जो शास्त्रों में निपुण है।
शब्द भेद करिए, शब्द भेद करिए। यह मतलब जो शास्त्र आदि आदिशु, मतलब आदि शास्त्र आदि के प्रति क्या है? अनिपुण है, अनिपुण है, उल्टा है, मतलब जो निपुण
नहीं है।
ये संधि में ही सारा गड़बड़ हो जाता है। जो ज्ञान योगी है ना, जो अपना अपना तर्क करते हैं, वो एक अ और आ पे जब होता है, जब अ और अ आ जाता है तो आ होता है, अ और आ होता है फिर भी आ होता है, तो इसलिए कभी कभी उल्टा अर्थ भी निकाला जा सकता है। परंतु इसमें क्या स्पष्ट क्या है, शास्त्र आदिशु अनिपुण है, जो शास्त्र आदि में निपुण नहीं है। उत्तम अधिकारी है, निपुण होता है, परंतु मध्यम नहीं होता, उतना निपुण नहीं होता जितना कि उत्तम अधिकारी है। तो यहाँ याद रखिए, उ जब उ आता है और अ आता है तो व हो जाता है संधि में। ठीक है, शास्त्र आदिशु और फिर आया अनिपुण है, तो दोनों संधि में क्या हो जाता है? व, उ और अ का व हो जाता है। ठीक है, आदिशु और अ तो व हो जाता है। शास्त्र आदिश्व निपुण है तो अनिपुण है, शास्त्र के ज्ञान में इतना निपुण नहीं है और शास्त्र के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में भी इतना निपुण नहीं है जो कि उत्तम अधिकारी है। परंतु परंतु क्या? श्रद्धावान सह, वैसे सह इसमें श्लोक में क्या होता है, कभी विसर्ग को ओमिट कर देते हैं, विसर्ग नहीं रखते हैं, है ये सह वास्तव में। सह मतलब वो पुलिंग है, अगर त्रिलिंग होता तो सा कहते, तो श्रद्धावान सह, तो वो व्यक्ति फिर भी श्रद्धावान है, हालांकि शास्त्रों का ज्ञान उतरा नहीं है, तर्क करने की क्षमता उतरी नहीं है शास्त्रों के आधार पर, फिर भी श्रद्धावान है। वो भी डावाडोल नहीं होता है उतना, श्रद्धा भी दृढ़ है उसकी, उतना दृढ़ नहीं है जितना कि उत्तम का है, परंतु फिर भी काफी दृढ़ है। हाँ घुमाइएगा, हाँ तो मध्यम अधिकारी का जो श्लोक था इसका विश्लेषण, हाँ कोई पढ़िएगा, इन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है।
उत्तम अधिकारी जितना शास्त्रों का ज्ञान नहीं है दूसरा कभी कभी बलवान विपक्ष के सामने कई सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर पाना।
तो यहाँ शब्द भेद किया हुआ है, क्या है?
शास्त्रादिषु
अनिपुणः। तो शास्त्र आदि में अनिपुण, इसका मतलब है पहली बात कि उत्तम अधिकारी जितना शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, कभी कभी बलवान पक्षी के सामने सही सिद्धांतों, वो सिद्धांत सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर पाता है वो, ठीक है। लेकिन दूसरा पढ़िए,
श्रद्धावान। शास्त्रों के निष्कर्षों में श्रद्धा, अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास।
शास्त्रों के निष्कर्षों में श्रद्धा और अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास। क्या लक्ष्य है? कृष्ण प्रेम का लक्ष्य है, कृष्ण परम सत्य है, इसमें दृढ़ विश्वास है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसमें दृढ़ विश्वास है।
सर्वथा दृढ़ निश्चय जो उत्तम अधिकारी में था, उसका मतलब रिलेट कैसे कर सकते हैं?
सर्वथा दृढ़ निश्चय उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया है।
तो मतलब इन दोनों से अलग कैसे था? जो निपुण भी होता है, श्रद्धावान भी होता है, और ये तीसरी चीज क्या है?
उसका निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय, डिटरमिंड।
मतलब इतनी निपुण नहीं आता,
ये श्रद्धावान है लेकिन उतना निपुण नहीं है वो। ये डिग्री का फर्क है, मात्रा का फर्क है। उत्तम अधिकारी तीनों में, देखिए तीनों में श्रद्धा है, तीनों में ज्ञान है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। पर उन कनिष्ठ में बहुत कम होता है और उत्तम में अधिक होता है, प्रौढ़ होता है, ठीक है। प्राय सेम है, प्राय एक ही है, प्रौढ़ श्रद्धा और दृढ़ निश्चय, ये प्राय एक है। परंतु कहने का मतलब केवल इतना है कि साथ साथ अपने कार्यों में, भक्ति के कार्यों में भी वो निश्चय रखते हैं। भक्ति उपदेश अमृत में क्या कहते हैं, कौन से छह लक्षण अच्छे हैं भक्ति के लिए? दूसरा शब्द कौन सा है? निश्चय। मतलब क्या? संकल्प, निश्चय होता है, संकल्प होता है भक्ति की बात, उसका संकल्प। इसलिए यह आखिरी लाइन में यही कहते हैं ना प्रभुपाद जी, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है, ठीक है। इसलिए साधन तथा तत्व के आधार पर, इसलिए हमने कहा उसमें क्या होता है कि अभ्यास भी होता है, न केवल पुस्तकीय ज्ञान और तर्क की क्षमता, परंतु अपने जीवन में उसको उतारा भी हुआ है उन्होंने, और उस अभ्यास में भी, अभ्यास करने में और सिद्धांत में, दोनों में निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, ठीक है। तभी ये मध्यम अधिकारी की बात हुई। अब बिना देखे बताइए मध्यम अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं?
उत्तम अधिकारी जितना शास्त्रों के होता है, और दूसरा है
केवल तर्क,
और कभी कभी जो बलवान मतलब
शुरू से बोलिए, तर्क सीधा नंबर टू पॉइंट पे आ गया।
उत्तम अधिकारी
सबसे पहला क्या?
पहला उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के जितना शास्त्रों में,
शास्त्रों के
ज्ञान
है, शास्त्रों के ज्ञान में उतना निपुण नहीं होता है, और इसीलिए
कभी कभी विपक्षियों के तर्क में, और
कभी विपक्षी सिद्धांतों का खंडन करने में असमर्थफल नहीं होता है, ठीक है। इतना बलवान नहीं होता, इतना निपुण नहीं होता वो। बलवान विपक्षी के सामने कभी कभी हार भी जा सकता है, भक्ति के सिद्धांतों का सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ,
श्रद्धा में दृढ़ होता है,
श्रद्धा में दृढ़, श्रद्धावान होता है, श्रद्धावान, तो उसकी श्रद्धा भी दृढ़ होती है, हालांकि वो निपुण नहीं है उतना, शास्त्रों में, परंतु उसकी श्रद्धा ठीक है। ठीक है, ये हुई बात मध्यम अधिकारी की। अभी आगे कनिष्ठ की बात आगे पढ़िएगा। कोई
नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त हुआ है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और न जो ही शास्त्र के निर्णय को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदल जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इतनी भिन्नता यह है कि वह नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्र से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नव दीक्षित कहलाता है।
द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती। दृढ़ निष्ठा नहीं होती, परंतु बिल्कुल निष्ठा नहीं है। बिल्कुल निष्ठा नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है। दृढ़ निष्ठा नहीं है, थोड़ी बहुत तो है ना, इसलिए तो भक्त कहलाता है, नहीं तो भक्त भी नहीं कहलाता। बिल्कुल ही निष्ठा नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, तो भक्त कैसे होगा, है ना। थोड़ा कुछ तो है, ठीक है। हाँ, तो आगे घुमाइएगा। रूप गोस्वामी किस प्रकार से परिभाषा देते हैं कनिष्ठ अधिकारी का। यो भवे कोमल श्रद्ध कनिष्ठो निबध्यते। बोलिए।
यो भवे कोमल श्रद्ध
हुआ है यहीं पे।
शास्त्रों का ज्ञान और लक्ष्य में श्रद्धा दोनों कोमल है।
शास्त्रों का ज्ञान कोमल है और शास्त्रों के उस अंतिम लक्ष्य में क्या है कि श्री कृष्ण परम सत्य है, श्री कृष्ण की के प्रति प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस लक्ष्य में जो श्रद्धा है वो भी कोमल है। तर्क तो प्रस्तुत नहीं कर सकता वो तो बात दूर है, लेकिन विपक्षी के सामना करता है तो डावाडोल होने की पूरी संभावना रहती है। विशेष करके जब कोई बलवान विपक्षी आता है सामने, अरे ये क्या कर रहे हो, चलो चलो मेरे साथ चलो, ये सब छोड़ो, हरे कृष्ण हरे राम क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, चलो चलो ये सब किसी ऋषि ने बैठ के कुछ में कुछ लिख दिया तो विश्वास करते हो, अरे इस देखो ऐश करना जीवन का उद्देश्य है, इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं है, चलो चलो, है ना, थोड़ा कुछ ऐसे कर लिया, अच्छा ऐसा है। कोमल श्रद्धा कभी भी डगमगा जा सकता है, डामाडोल हो सकता है। अंतिम लक्ष्य में पूर्ण विश्वास नहीं है, थोड़ा है, इसलिए प्रभुपाद जी यहां कहते हैं अंतिम लक्ष्य में दृढ़ विश्वास नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, दृढ़ निष्ठा नहीं है। प्रभुपाद जी ये नहीं कहते कि बिल्कुल निष्ठा नहीं है। ठीक है, आगे अभी और विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अभी इसका सार, तीन प्रकार के भक्त, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, और तीन आधार पर उनका विभाजन किया है, लक्ष्य में श्रद्धा, शास्त्रों का ज्ञान और बलवान विपक्षी को पराजित करने में वो क्या है, निपुण है नहीं है क्या है। तो लक्ष्य में श्रद्धा, कौन से लक्ष्य की बात कर रहे हैं हम, पहली बात कि श्री कृष्ण परम सत्य है, दूसरी बात कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, और साथ साथ इस इच्छा के अलावा कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। ये लक्ष्य है, भले हमारे अंदर पूरी तरह से शुद्धता हो या ना हो, कम से कम हम इस लक्ष्य को तो मानते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है, भले हम अभी इस समय नौ सुखियां क्यों ना हो, भले हमारे अंदर इस समय भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो, परंतु थोड़ी बहुत तो विश्वास हमारे अंदर है कि हमें इस अवस्था को प्राप्त करना है कि अन्य इच्छाएं शून्य हो जानी चाहिए, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए। ये है लक्ष्य में श्रद्धा। अब बताइए लक्ष्य में श्रद्धा का क्या मतलब है, कौन से लक्ष्य की बात कर रहे हैं हम? हमने जो बताया वो बताइए। कृष्ण परम सत्य है, निराकार नहीं है, कौन है? व्यक्ति है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पहली बात। दूसरी बात, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और कृष्ण को प्रसन्न करना, हमारी इच्छा से कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना, ये लक्ष्य है। और साथ साथ अन्य अभिलाषाओं को त्याग करना चाहिए कृष्ण के संतुष्टि के लिए, ठीक है? ये अभिलाषा, ये लक्ष्य को मन में रखना, इस लक्ष्य की बात कर रहे हैं। तो इस लक्ष्य में श्रद्धा उत्तम अधिकारी की कितनी है? प्रौढ़ है। मध्यम की दृढ़ है, और कनिष्ठ की कोमल, ठीक है? साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान कैसे है उत्तम अधिकारी का?
श्रेष्ठ।
मध्यम का?
मध्यम।
और कनिष्ठ का? अल्प है। और तीसरी बात, बलवान विपक्षी को पराजित करने में उत्तम क्या है? निपुण है। मध्यम क्या है? बलवान विपक्षी को पराजित करने में मध्यम कभी सफल कभी नहीं, ठीक है? और बलवान विपक्षी को पराजित करने में कनिष्ठ असमर्थ होता है, नहीं कर पाता, ठीक है? तो ये सार है अभी हमारे सारे चर्चा का सार इस चार्ट के अंदर, जो आप इन चीजों को अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है? ये आप सबने श्रद्धा का अर्थ अभी इसका आगे इसकी व्याख्या में पढ़िएगा।
लक्ष्य में श्रद्धा का अर्थ विश्वास होना कि जीवन का लक्ष्य है श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण की सेवा के अलावा अन्य इच्छा को त्यागना चाहिए,
इन दो चीजों का ज्ञान होना और श्रद्धा होना पूरी तरह से, इसको कहते हैं लक्ष्य में श्रद्धा। इस लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं,
जीवन का चरम लक्ष्य,
चरम लक्ष्य यही है। तो इस लक्ष्य में श्रद्धा उत्तम अधिकारी की प्रौढ़ है, मध्यम का दृढ़ है, और कनिष्ठ का कोमल है, कोमल श्रद्धा। ठीक है, आपने लिख लिया सब?
नहीं,
एक मिनट। ये सब करने से अपने आप आ जाता है। शाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति की जानती थे। हाँ, तो क्या प्रश्न है आपका इस श्लोक के बारे में?
तो जो कनिष्ठ में गुण नहीं है उत्पन्न के माध्यम से,
हाँ,
तो वो गुण अपने आप आ जाते हैं।
हाँ, प्रगति होती रहती है। जो कनिष्ठ है अगर उसे अच्छा संग मिलते रहता है और अपने पथ में वो आगे चलते रहता है अच्छे संग में रह के, तब धीरे धीरे से वो द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में आ जाएगा, अर्थात कनिष्ठ भी मध्यम बन जाएगा, मध्यम भी उत्तम बन जाएगा। ये पद्धति है ही ऐसे कि वो धीरे धीरे जैसे भक्तों का संग करेगा तो धीरे धीरे उसे पता चलेगा, उसे ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे से। यही तो साधु संघ का लाभ है। भले कोई अनपढ़ भी हो परंतु अगर वो ध्यान से कृष्ण कथा सुन रहा हो, नियमित तौर से नित्य नियम बनाया उसने, तो बहुत कुछ वो जानेगा। अनेक ऐसे उदाहरण इतिहास में हैं। दूसरी ओर कोई डॉक्टरेट भी है, पीएचडी वगैरह बहुत कुछ कर लिया है, पर भक्तों का संग नहीं, केवल शास्त्रीय पुस्तकीय ज्ञान है, तो कोई फायदा नहीं। तो उस तेषां सतत युक्ता नाम श्लोक में भगवान ये कहते हैं सतत युक्त होना चाहिए। पहली बात, ऐसा नहीं कि कभी युक्त होना कभी नहीं होगा। भजताम, किस प्रकार से भजन करना चाहिए भगवान का? प्रीति पूर्वक। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपजानते, जिससे कि वो मेरे पास आ सकता, मैं ऐसे अंदर से ज्ञान प्रदान करता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए तो अभी इसकी व्याख्या और है, इस लक्ष्य की बात, लक्ष्य में श्रद्धा। हाँ पढ़िएगा। कोई
वरिष्ठ अधिकारी की लक्ष्य में श्रद्धा कोमल है, इसका अर्थ है कि उसमें श्रद्धा थोड़ी तो कम से कम है। यदि श्रद्धा लक्ष्य में बिल्कुल न होती तो वह भक्त ही नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें थोड़ी सी श्रद्धा है कि कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए और अन्य इच्छाओं को त्यागना चाहिए, वो उत्तम भक्ति का अभ्यास करने के लिए अधिकारी है।
इस बात को समझ गए हम, पहले लिख लीजिए। उत्तमा भक्ति करना का अभ्यास करना और शुद्ध भक्त होना, ये जो अलग चीजें हैं। आप समझ गए? क्योंकि उत्तमा भक्ति में कनिष्ठ भी आता है। ये उत्तमा भक्ति के ही तीन, उत्तम भक्ति के अंदर तीन अधिकारी व्यक्तियों का वर्णन चल रहा है। अगर ऐसे होता कि उत्तमा भक्ति केवल शुद्ध भक्त कर सकते हैं तो उनको गोस्वामी ऐसे कनिष्ठ और मध्यम का वर्णन करते ही नहीं। और ये तो केवल वैधि भक्ति की बात चल रही है, अभी आगे चल के रागानुग है, फिर भाव है, प्रेम है। आवश्यक नहीं, ये हो सकता है, मतलब धीरे धीरे क्रम होता है, विकास होता है भक्ति का, श्रद्धा का विकास होने लगता है। ठीक है, और भी अगर किया जाए तो फिर और कोई विभाजन का अंत नहीं है। हाँ और कुछ पढ़िएगा इसको, ये तो पढ़िए मत, इसको समझाइए इसमें क्या लिखा है, अपने शब्दों में समझाइए। कौन समझाएंगे?
Mm-hmm.
अगर श्रद्धा बिल्कुल नहीं होती तो भक्त ही नहीं कहलाता। हाँ तो फिर आगे, इसलिए भक्त कहलाता है, ठीक है, तो उसकी श्रद्धा कम है इसलिए वो भक्त कहलाता है, नहीं तो भक्त नहीं होता। तो आगे
श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए और अन्य इच्छाओं को त्यागना चाहिए, तो इससे वह उत्तम भक्ति का अभ्यास कर सकता है।
उत्तम भक्ति के लिए के अभ्यास के लिए
अधिकारी
व्यक्ति हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है? लक्ष्य में श्रद्धा है, भले अल्प है, भली श्रद्धा कोमल है, फिर भी है, थोड़ी बहुत तो है, इसीलिए वो अधिकारी व्यक्ति माना जाता है। भले कनिष्ठ हो वो, लेकिन अधिकारी है, इसीलिए इसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी। उनका अधिकार कनिष्ठ है, उनका अधिकार मध्यम है, उनका अधिकार उत्तम है, उत्तमा भक्ति करने के लिए, ठीक है, उत्तमा भक्ति करने के लिए का अभ्यास करने के लिए अधिकार तीनों का अलग अलग स्तर पे है। आप समझ रहे हैं ना? और कोई समझाइए अपने शब्दों में इस बात को, कौन बताएंगे? कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ,
कनिष्ठ भक्ति जो होता है उसमें कोमल श्रद्धा होती है, कई बार श्रद्धा होती है।
किस चीज में कोमल श्रद्धा होता है?
भगवान कृष्ण
लक्ष्य में,
लक्ष्य में।
लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है और दूसरी जो इच्छा है वो उनसे काम नहीं करना। तो इसी श्रद्धा का वजह से वो भक्त कहलाता है, और ये काफी है उसको अधिकारी, ये चीज उसको अधिकारी बनाती है उत्तम भक्ति की शिक्षा लेने के लिए,
उत्तम अधिकारी का अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए।
और कनिष्ठ मध्य और उत्तम तीनों के जो अधिकार है उत्तम भक्ति का अभ्यास लेने के लिए वो तीनों अलग अलग।
तीनों व्यक्ति अधिकारी हैं, लेकिन तीनों के अधिकार में फर्क है। उत्तम का अधिकार श्रेष्ठ होता है, सबसे अधिक अधिकार उसका होता है, मध्यम का मध्यम और कनिष्ठ का सबसे कम। क्यों? लक्ष्य में श्रद्धा, शास्त्रों का ज्ञान और तर्क विपक्षों का सामना करने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो भी अलग है। इसलिए अधिकार तीनों का अलग अलग है, लेकिन तीनों उत्तम भक्ति कर रहे हैं और कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ,
भक्तों के नाम के पीछे अधिकारी लगाया जाता है, वो गृहस्थ के लिए अधिकारी, मतलब वो गृहस्थ। ब्रह्मचारी होता है तो दास ब्रह्मचारी, कृष्णदास ब्रह्मचारी, गृहस्थ होता है तो कृष्णदास अधिकारी, सन्यासी होते हैं तो कृष्णदास गोस्वामी, और वानप्रस्थ होते हैं तो वानप्रस्थ के लिए क्या कहते हैं? वनचारी, कृष्णदास वनचारी, वन में चरण करने वाला, विचरण करने वाला, वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करना मतलब वानप्रस्थ, तो वनचारी वन में चरण करने वाला, विचरण करने वाला। कृष्णदास ब्रह्मचारी, कृष्णदास अधिकारी, कृष्णदास वनचारी, कृष्णदास, तो वो अधिकारी अलग है।
जो उत्तम भक्त होता है उसका जो उत्तम भक्ति के लिए के अभ्यास के लिए जो अधिकार होता है वो तो ऑलरेडी उसे अटेन कर चुका होता है, तो ऑलरेडी उसका अभ्यास कर चुका होता है उत्तम भक्ति।
अभी तक तो वैदिक भक्ति नहीं स्थित है ना, अभी भी वो वैदिक भक्ति ही कर रहा है, भले वो मध्यम और कनिष्ठ के तुलना में आगे बढ़ा हुआ हो, फिर भी वैदिक भक्ति ही कर रहा है ना। अभी तक उत्तम भक्ति का अंग जो वैदिक भक्ति है वो ही तो कर रहा है अभी। हर चीज करने के लिए कोई अधिकार चाहिए। अगर कोई दसवीं कक्षा में है, कोई आठवीं में है स्कूल में, कोई पांचवीं में है, कोई पहले कक्षा में है, तो हरेक बच्चे का अधिकार चाहिए ना। जिसका अधिकार पहले कक्षा का है उसको पांचवी कक्षा में भर्ती नहीं कर सकते आप, और जो दसवीं कक्षा में है उसका भी अधिकार है दसवीं में रहने के लिए, समझ गया। जो उत्तम अधिकार है उसका उसका अधिकार है उत्तम के स्तर पर, जैसे दसवीं कक्षा के विद्यार्थी का अधिकार है दसवीं कक्षा में रहने के लिए, जो पांचवी कक्षा के बच्चे का नहीं है। ठीक है,
जी उपदेश अमृत में कहते हैं कि आपका गुरु अगर उत्तम अधिकारी हो तो सबसे अच्छा है, तो वो ये वैदिक भक्ति के उत्तम अधिकारी की बात कर रहे हैं कि उत्तम अधिकारी।
देखिए ये दोनों अलग अलग परिभाषाएं हैं, इसमें हम डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे, परंतु श्रीमद् भागवत आदि में जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ का वर्णन किया है वो थोड़ा अलग है। उसमें तो उत्तम भागवत की बात कही गई है, उत्तम भागवत जो बिल्कुल शुद्ध भक्त है, सब जगह कृष्ण को देखते हैं, तो वहाँ यहाँ पर उत्तम अधिकारी वैधि भक्ति की बात हो रही है। और जो वैधि के स्तर में भी जो उत्तम है उनके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, परिया सबसे पहले ये बताइए कि ये अध्याय में विषय क्या है, भक्ति की पात्रता, किस प्रकार की भक्ति की, उत्तम भक्ति के कौन से अंग की पात्रता, साधन भक्ति के कौन से अंग की पात्रता, स्पष्ट है ना, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा तो आइए इसमें तीसरे अनुच्छेद में पढ़िए, तीसरे तीस नंबर पेज जो है उसका पहला वाक्य पढ़िए,
भगवद्गीता में भक्ति के भक्त का
तीस नंबर पेज। इस प्रकार
उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त
भागवत की तो बात ही नहीं हो रही है,
बना लेना चाहिए बना लिया किसी को ऐसा नहीं। देखो जितना आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति है उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। जो ऋत्विक वाले बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति बिल्कुल प्रेमा भक्ति की अवस्था में नहीं हो तब तक नहीं कर सकते, ऐसे तो नहीं रखा गया। शुद्ध भक्त, देखिए ये बातों को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। शुद्ध भक्त मतलब क्या है, हम बोलते हैं ना नहीं, कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त है क्या मतलब है, क्या मतलब हाँ ठीक है, लेकिन हम जब कहते हैं अभी इसको अच्छे ढंग से युक्ति के ढंग से सोचिए, जब आप कहते हैं कि कोई शुद्ध भक्त है तो क्या उस प्रेमा भक्ति की अवस्था में हो तभी उसको शुद्ध भक्त कहेंगे, या भाव की अवस्था में है तभी उसको शुद्ध भक्त माना जाएगा, या भले वो भाव तक नहीं पहुंचा हो लेकिन रुचि और आसक्ति के स्तर में उसको शुद्ध भक्त मानेंगे, कब मानेंगे उसको शुद्ध भक्त,
देखते ही भक्त बन जाएगा।
इसलिए शुद्ध भक्त की परिभाषा भी अलग अलग हो सकती है। जो भाव की अवस्था में है उसकी योग्यता क्या है पता है किसी को, भाव भक्ति क्या, हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं परंतु फिर भी किसी को पता है,
जो सब समय कृष्ण चेतना में रहता है, सब समय कृष्ण,
हाँ ठीक है, लेकिन प्रमुख लक्षण क्या है, जो अष्ट सात्विक विकार है वो प्रकट होने चाहिए, कौन से है वो अष्ट सात्विक विकार, वाक्यों से रुद्ध हो जाना, अश्रुधारा है ना, ये सब चीजें हैं, कंपन होना, तो ये सब चीजें स्वाभाविक तौर से ऐसे व्यक्ति में भगवत प्रेम की वजह से उत्पन्न होती है। और भाव भक्ति की अवस्था में वो साक्षात भगवान का सामने दर्शन करने के लिए योग्य हो जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है, हाँ है ना, लेकिन फिर भी प्रेमा भक्ति की अवस्था में नहीं है, अभी तक प्रेमा भक्ति के लिए आगे बढ़ना है उसे, तो कौन शुद्ध भक्त है? जब कहते हैं कि केवल शुद्ध भक्त को हमें गुरु बनाना चाहिए, कौन है शुद्ध भक्त, कौन जानेगा और परीक्षा कौन करेगा? हम करेंगे? अच्छा ये नहीं उत्तम नहीं होती तो होगा ये ऐसा ये प्रेमा के नहीं, यो भाव होगा शायद, ये भाव नहीं, ये आसक्ति रुचि के इस तरह का होगा। इसलिए ये सब चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिसने अपना जीवन समर्पित किया है इस आंदोलन के लिए, जो प्रभुपाद जी के नियमों के अनुसार बड़े श्रद्धावान है, बड़ा निष्ठावान है, जो पूरी तरह से आदेशों का पालन कर रहा है, कृष्ण भक्ति के प्रचार में पूरी तरह से रत है, सेवा में लगा हुआ है, अनैतिक कार्यों में जुटा हुआ नहीं है,
जो अनन्य भाव से
बिना कोई स्वार्थ के लगे हुए हैं, और जो अनुभवी हैं, अनुभवी हैं भक्त, और जो कम से कम जिनको उत्तम अधिकारी का स्तर है, यहाँ पर उपाय जी स्वयं कह रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये तो उत्तम भक्ति की ही परिभाषा है ना। लेकिन उत्तम भक्ति में भी काफी कुछ आता है ना, वैधि साधना, वैधि रागानुग भाव प्रेम, ये सब आते हैं उत्तम भक्ति में। और ये श्लोक अन्याभिलाषितम श्लोक ये वैधि से लेकर प्रेम तक लागू होता है। तो ये सब लक्षण है, ठीक है ना, यहाँ भी प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं। हालांकि जितने आगे बढ़े हुए हैं गुरु उतना अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल, शुद्ध भक्त पहचानने के लिए अपने को शुद्ध भक्त लेना चाहिए, नहीं तो हम किस पे आधारित करते हैं? अरे बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं शुद्ध भक्त है, ये बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं शुद्ध भक्त है, ये धोती बहुत अच्छी तरह से पहनते हैं, है ना। तो कौन जानेगा कौन शुद्ध भक्त है, कौन अधिकारी व्यक्ति है विश्लेषण करने, जजमेंट करने के लिए ये शुद्ध भक्त है नहीं है, है ना। हालांकि लक्षण तो दिखाई पड़ते हैं, फिर भी हमें इस चीज में नहीं पढ़ना है, है कि नहीं? ठीक, आगे बढ़िए। एक बार हमने याद है कोई एक ब्रह्मचार्य आश्रम में देखा, कोई चर्चा चल रही थी, कोई भक्त ने कंप्लेन किया, सब बात करे मेरे गुरु ऐसे हैं, तुम्हारे गुरु वैसे नहीं है, तो उनके गुरु ऐसे हैं, तो गुरु ऐसे हैं, बहुत डांटा। ये सब बिल्कुल नौसखिया भाव है कि मेरा गुरु तुम्हारा गुरु, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि वो परिपक्व हो जाए और समझे कि सब कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, और सबके प्रति सम्मान और प्रेम होना आवश्यक है। कि मेरा तुम्हारा करने से क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ पढ़िए आगे।
गीता में चार प्रकार की चर्चा की गई है, हालांकि आत्मा है।
अच्छा, पहली बात, भगवद गीता में चार प्रकार के सुकृतियों की चर्चा की गई है, कौन सा है वो श्लोक?
अर्थो अर्थार्थी
हरतर्षभ। क्या मतलब है इसका? चतुर्विधा, चार प्रकार के कौन? भजन के माम लोग मेरे पास आते हैं मेरी सेवा करने के लिए, चतुर्विधा भजन के माम जना है। चार प्रकार के जन हैं, लोग हैं जो आते हैं। सुकृतिनः अर्जुना, कृतिनः मतलब कोई जो काम करने वाला है, सुकृतिनः मतलब जो अच्छे काम करने वाले, जो पुण्यवान हैं, उनको सुकृतिनः कहते हैं। इसके विपरीत क्या है? दुष्कृतिनः। तो जो सुकृतिनः है वो चार प्रकार के होते हैं। साधारण पुण्य आत्मा में और सुकृतिनः में अंतर क्या है? जो केवल साधारण पुण्य करते हैं और जो सुकृतिनः है, सुकृतिनः भक्त भी वो एक प्रकार का पुण्य ही माना जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है?
ये भक्ति उन्मुख पुण्य।
बहुत अच्छा, ये भक्ति उन्मुख पुण्य है, जो भक्ति से संबंधित है उसकी पूंजी जब पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है तो फिर वो भक्ति में आ सकते हैं, कृष्ण के पास आ सकते हैं। आपने भक्ति शास्त्र में श्लोक पढ़ा है ना, चतुर्विधा भजन के बाद तक पहुंच गए हैं, है ना? तो इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण? प्रभुपाद जी कहते हैं इसके बारे में कि कोई अगर दुखी है, कोई भौतिक चीजों के लिए अभिलाषा करता है, तो आवश्यक नहीं है कि वो कृष्ण के पास ही आएगा। आएगा जिसको धन चाहिए, क्या ये जरूरी है कि कृष्ण के पास ही जाएगा? तो कौन जाएगा कृष्ण के पास धन के लिए? जिसकी सुकृति है वही जाएगा। अगर किसी को धन चाहिए और उसकी सुकृति नहीं है तो वो क्या करेगा? देवताओं के पास जाएगा, बैंक में डकैती करेगा, है ना, चोरी करेगा, कुछ करेगा। लेकिन केवल जो सुकृति में है, जिन्होंने भक्ति के पुण्य एकत्र किए हुए हैं अनेक जन्मों से, वो केवल कृष्ण के पास जाएंगे। इसलिए उनको उदार आत्मा कहते हैं श्री कृष्ण। उदार अंतर्व इन्वैते, अगला श्लोक है ना, उसमें कहते हैं भगवान ये भी उदार हैं। उदार क्यों हैं? हालांकि भौतिक इच्छा से जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। भगवान के पास भौतिक इच्छा लेकर नहीं जाना चाहिए, शॉपिंग लिस्ट लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं ये उदार हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं। कम से कम बैंक तो नहीं लूटने जा रहे हैं, चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं ना पैसा मांगने के लिए। और मेरे पास तब तक कोई व्यक्ति नहीं आ सकता जब तक कि उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति, भक्ति उन्मुखी सुकृति पर्याप्त मात्रा में बड़ी नहीं हुई हो। ये भक्ति की सुकृति आती कैसे है बताइए? पूर्व जन्म से। कैसे? उदाहरण दीजिए। भक्तों को कीर्तन करते हुए देख कर, सड़क में हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्त जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या है, क्या लोग कर रहे हैं, कोई पता नहीं विदेशों में किसको क्या मालूम हरे कृष्ण क्या है। वो देखते हैं संकीर्तन पार्टी जा रही है, हरिनाम सुनते हैं, भक्तों को देखते हैं, उनको इसका महत्व नहीं पता होता, फिर भी वो देख लेते हैं, सुकृति हो जाती है। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, काफी दूर का सोच के प्रसाद खाना किसी को जाके देना। देखो आज मेरा जन्मदिवस है, जन्मदिवस के उपलक्ष में मैंने थोड़ा मैं केक दे रहा हूँ, सबको मिठाई दे रहा हूँ। कई लोग हैं जिनको प्रसाद कहने से वो स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि ये जन्मदिवस का केक है, मिठाई है, कुछ तब वो लेते हैं, लेकिन वो प्रसाद है उनको नहीं मालूम। तो प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद लेकर फायदा हो रहा है, उनको लाभ हो रहा है। ये है अज्ञात सुकृति। तो ऐसे अज्ञात सुकृति की पूंजी जब बढ़ती रहती है अनेक जन्मों से, तब एक दिन आता है जबकि ऐसे परिस्थिति में जबकि उसे भौतिक आवश्यकता होती है या वो पीड़ित होता है या कुछ तब वो श्री कृष्ण के पास जाता है, अन्यों के पास नहीं जाता, इसलिए उनको उदार कहते हैं भगवान। फिर भी ये उत्तम भक्ति के अधिकारी व्यक्ति नहीं है। अभी आपने प्रश्न किया था, किसने किया था, गजेंद्र के बारे में याद है? जब अन्याभिलाषिता शून्य की बात हो रही थी, वो आगे चल के हम बात, आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर भी। हाँ, तो ये पढ़ लीजिए, आगे पढ़िए।
हालांकि ये सब उदारात्मा है, इन्होंने कृष्ण के पास आते समय उपयुक्त कृष्ण भक्ति के लक्ष्य को या तो समझा नहीं था या स्वीकार नहीं किया था।
तो हालांकि ये उदारात्मा है, कृष्ण के पास आते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो कृष्ण के पास आए हैं, परंतु माइनस पॉइंट क्या है? हाँ, जैसे उनकी इच्छा पूर्ण होती है वो चले जाते हैं, वो भी सही है, परंतु आपने कहा क्या, कहा
कृष्ण भक्ति के लक्ष्य को नहीं जानते।
लक्ष्य, हम पहले लक्ष्य की चर्चा कर रहे थे ना, लक्ष्य में श्रद्धा, उनको लक्ष्य में श्रद्धा नहीं है, लक्ष्य का ज्ञान नहीं है। लक्ष्य का ज्ञान क्या है? कृष्ण को हमें प्रसन्न करना है। क्यों करना है? कृष्ण परम सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास हमें करना चाहिए, अन्य अभिलाषाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये लक्ष्य है, लक्ष्य के प्रति श्रद्धा। तो हालांकि ये कृष्ण के पास आते हैं, फिर भी लक्ष्य का ज्ञान या तो नहीं होता, या ज्ञान होते हुए भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए क्या, इसलिए उत्तम भक्ति के अधिकारी वो नहीं माने जाते हैं। सुनाइए, ये लिख लिया सबने? हाँ, ये लास्ट है क्या? अच्छा,
उत्तम अधिकारी उत्तम भक्ति का अभ्यास के अधिकारी और उत्तम भक्ति के अधिकारी।
हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है। उत्तम भक्ति में पहले अभ्यास आता है, साधन भक्ति, उसके बाद भाव, फिर प्रेम। तो जब उत्तम भक्ति के अभ्यास की बात करते हैं, तो हम साधन भक्ति की बात करते हैं। साधन भक्ति का एक अंग है वैधि भक्ति। अच्छा ठीक है, तो अभी आप पढ़िए आगे किताब में, इस चार प्रकार के भक्तों के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पढ़ रहे हैं, बताइएगा।
भगवद्गीता में भक्ति के भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है, उसमें कहा गया है कि चार प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये चार प्रकार के लोग हैं आर्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की पुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौ स्थितियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौ स्थितियों की द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है।
भगवत गीता में नौ सुखिया भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। तो इनको ये चार प्रकार के जो सुकृतिन हैं, इनको भी नौसुखिया भक्त माना जाता है। ये सकाम भक्त होते हैं, फिर भी उत्तमा भक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। तो ये चार प्रकार के सुकृतिनों का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं आर्त, ये चार्ट मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप सब पढ़ चुके हैं भक्ति शास्त्र में, इसलिए आवश्यकता नहीं है, आप फिर भी लिख सकते हैं। आर्त, आर्त मतलब कौन है? जो बहुत दुखी है, जो पीड़ित है किसी किसी समस्या की वजह से, तो वो कृष्ण के पास आता है किसके लिए?
दुख
का निवारण करने के लिए। और इसके लिए उदाहरण कौन कौन सा है? गजेंद्र। गजेंद्र को क्या पीड़ा थी? हाँ, तो मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया था और मृत्यु का, जन्म मृत्यु का सवाल हो गया था। अनेक वर्षों तक युद्ध चलता रहा जल में, परंतु अंततः जब गजेंद्र ने देखा कि मेरी जीत अभी नहीं होने वाली है, तब 1000 वर्ष बाद गजेंद्र ने प्रार्थना अर्पण की, स्तुति की भगवान की, पूर्व जन्म के जो स्तुतियां याद आई उनको भगवान की कृपा से, उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान तुरंत आए और गजेंद्र को बचा दिया। अर्थार्थी, अर्थ आर्थी, अर्थ मतलब धन और आर्थी मतलब प्राप्त करना, इच्छुक। तो इसके बारे में कौन से उदाहरण है? ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? साम्राज्य चाहिए था। कितना बड़ा साम्राज्य? ब्रह्मा जी से भी बढ़कर एक एक साम्राज्य चाहिए था। देखो बच्चा कितना क्या देखिए, वैसे बच्चे कुछ मांगते मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? ये खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो कहें। लेकिन ध्रुव महाराज मांगा तो ऐसा साम्राज्य मांगा जो कि ब्रह्मा जी का भी नहीं है। और इतना ही नहीं, केवल ऐसे मांग के रह नहीं गया, घर छोड़ दिया। और अनेकों ने, विशेष करके नारद मुनि ने बहुत कोशिश किया, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, ये थोड़ी उम्र है तपस्या करने की। नहीं नहीं देखो, ऐसे थोड़ी 5 साल की उम्र में कोई अपमान को इतनी गंभीरता से लेता है, चलो चलो चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा, जब बड़े हो जाओगे तब तपस्या करना। ध्रुव महाराज ने क्या कहा? ए मुनिवर, अगर आप मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में आप मेरी सहायता कर सकते हैं तो कृपया कीजिएगा, मैं आपका आभारी हूँगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कृपया मुझे आगे बढ़ने दीजिए, आप किस तरफ आगे है ना, ऐसे कहा। इतना दृढ़ संकल्प, और फिर नारद मुनि ने देखा, देखो तो सही, क्षत्रिय बालकों का दृढ़ संकल्प देखो कैसा है, हालांकि ये केवल बच्चा 5 साल का है, फिर भी ऐसे जो है अद्भुत इसमें निश्चय कर लिया है कि वन में जाकर तपस्या करेगा एक ऐसे साम्राज्य के लिए जो कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। और आगे चल के ज्ञानी जिज्ञासु, जिज्ञासु का उदाहरण जिज्ञासु नैमिषारण्य के ऋषि कौन थे? शौनक आदि ऋषि, और वो लोग वहां पे एकत्र हुए थे। वो जिज्ञासु थे, क्या है, चलो हम भी सुनना चाहते हैं। तुत गोस्वामी जी क्या है बताइए, आपने क्या सुना? जिज्ञासु, अधिकतर जो भी अर्थार्थी होते हैं, आर्थ आर्थ होते हैं या जिज्ञासु होते हैं, जब उनकी अपनी अपनी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो वो चले जाते हैं। केवल जिनकी सुकृति ज्यादा है वही टिक जाते हैं, या जिनको भक्तों का संग मिलता है, भक्तों की कृपा मिलती है या भगवान की कृपा मिलती है, तब वो रह जाते हैं और आगे चल के उत्तम भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, जैसे कि ये सब बन गए आगे चल के। और ज्ञानी की श्रेणी में कौन आते हैं? चतुष्कुमार आते हैं, चार कुमार। तो इन चारों के बारे में बताया गया है कि जब वो कृष्ण के पास आए उस समय वो उत्तम भक्ति के अधिकारी नहीं थे, बाद में बने। तो जब हम कहते हैं कि ध्रुव महाराज उत्तम भक्ति में नहीं है, इसका मतलब कब की बात कर रहे हैं? सत्य ठीक है, लेकिन कब की बात? मतलब वन में जाने के पहले की बात कर रहे हैं, बल्कि जब उन्होंने तपस्या की उस समय भी लक्ष्य का ज्ञान नहीं था उनको, ठीक है ना। क्योंकि लक्ष्य का ज्ञान नहीं था इसलिए वो उत्तम भक्ति में के क्षेत्र में नहीं माने जाते हैं। केवल वो नौसुखिया भक्त माने जा सकते हैं जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, या सुकृत माने जा सकते हैं। केवल कृष्ण के पास जाना इतना काफी नहीं है। कर्मकांडी लोग भी जाते हैं कृष्ण के पास, आज सोमवार को इनके पास गए, मंगलवार उनके पास गए, बुधवार उनके पास गए, है ना। हर दिन अलग अलग उपवास, अलग अलग सबकी सबको संतुष्ट करना, कभी कृष्ण कभी दिन आ जाता है उनके लिए उपवास कर देते हैं। तो कृष्ण के पास जाने वाले लोग तो बहुत है, परंतु लक्ष्य का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक उनको उत्तम अधिकारी में प्रवेश करने का अधिकार नहीं मिलता। तो अभी आपके गजेंद्र के प्रति जो प्रश्न था, द्रौपदी और गजेंद्र, द्रौपदी ने एक आपातकालीन अवस्था में श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण ने रक्षा की, और द्रौपदी का ये पुकार शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है या उनके शुद्ध भक्ति पर दोष नहीं है, परंतु गजेंद्र का क्यों है? आपने प्रश्न किया था फिर गजेंद्र का क्यों नहीं है, गजेंद्र भी तो गए थे आपातकालीन स्थिति में भगवान के पास। तो ठीक है, द्रौपदी भी थोड़ी देर बाद ही गई थी, पहले उन्होंने अपनी चेष्टा की, तो अपने पतियों से पूछा। हाँ,
गजेंद्र को, गजेंद्र ने सिर्फ ऐसा पुकारा कि अगर कोई है, अगर कोई भगवान है तो मतलब ऐसा कोई
ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। और आगे और स्पष्टीकरण कीजिए।
भगवान को
द्रौपदी भी तकलीफ में थी, द्रौपदी ने भी तो वैसे ही किया, पहले से भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या लक्षण बताया गया, सबसे पहले तो लक्ष्य में श्रद्धा होनी चाहिए, अल तो भले हो परंतु होनी चाहिए। जब तक लक्ष्य में श्रद्धा नहीं है, लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, तब वो उत्तम भक्ति के क्षेत्र में आगे अंतर्गत नहीं माना जाता। तो गजेंद्र को नहीं स्पष्ट ज्ञान था लक्ष्य का उस समय, ठीक है, और वो साधन भक्ति नहीं कर रहा था, वैदिक भक्ति नहीं कर रहा था वो, बल्कि द्रौपदी देवी तो पहले से ही शुद्ध भक्ति की अवस्था में थी, स्वाभाविक प्रेम था उनका कृष्ण के प्रति, है ना। इसलिए द्रौपदी ने जब कृष्ण को पुकारा था अपने लिए, फिर भी वो आपातकालीन स्थिति होने के कारण वो पुकार उसके शुद्ध भक्ति में दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति स्वाभाविक स्तर पे पहले से ही था पूर्वाभ्यास से, परंतु गजेंद्र के साथ ऐसा नहीं था। वो पहले से न तो उसका स्वाभाविक प्रेम था भगवान के प्रति, और न ही ऐसे इस जन्म में वो कुछ साधन भक्ति करते आए थे। पिछले जन्म में वो थे, कौन थे, इंद्रद्युम्न राजा, और उनको श्राप मिला था किनके द्वारा, मोक्ष अगस्त्य मुनि द्वारा, कि तुम जड़ हो, मैं तुम्हारे आश्रम में आया, तुम ध्यान में बैठे हो, धूम कर रहे हो, तो धूम नहीं कर रहे थे, तुम आश्रम में बैठ के ध्यान में बैठे हो, तुम अतिथि का स्वीकार नहीं करते, ब्राह्मणों का स्वागत नहीं करते, तुम जड़ व्यक्ति की तरह बैठे हो, तो तुम जड़ बन जाओ, हाथी बन जाओ अगले जन्म। परंतु ये श्राप तो हुआ, परंतु उनका उद्धार तो हो गया भगवान के हाथों। तो जो भी ऐसे श्राप मिलते हैं वो श्राप नहीं वरदान ही होते हैं, जैसे नारद मुनि नलकुबर मणिग्रीव को दिया है। तो खैर, गजेंद्र ऐसे साधन नहीं कर रहा था, गजेंद्र उत्तम अधिकारी के लिए, उत्तम भक्ति के लिए अधिकारी व्यक्ति नहीं था। परंतु चारों के चार वर्गों में जब उनको भगवान या भगवान के भक्तों की कृपा मिली, तब उत्तमा भक्ति में प्रविष्ट हुए। ध्रुव महाराज ने साक्षात भगवान का दर्शन किया और जब दर्शन किया तो क्या साम्राज्य मंगल क्या कहा मैं टूटे हुए कांच के टुकड़े के लिए मैं मांग रहा था आपसे लेकिन अभी मुझे अनमोल रत्न प्राप्त हो गया है। स्थानाभिलाषी तपस्वि स्थितोहम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। स्वामिन कृतार्थः हे स्वामी हे प्रभु मैं भी कृतार्थ हो गया पूरी तरह से संतुष्ट हूँ वरम न याचे अभी मुझे कोई वरदान की याचना नहीं करनी है। स्थान अभिलाषी स्थानाभिलाषी तपसः स्थितो हम एक स्थान की अभिलाषा के लिए मैंने अपने आप को तपस्या में स्थित किया और त्वाम प्राप्तवान आपको प्राप्त भी किया मैंने। आप जिनको प्राप्त करना देव मुनियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है परंतु अब जब मैंने आपको प्राप्त किया काचम विचिन्मन मुझे लग रहा है कि टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है ये साम्राज्य। और फिर दिव्य रत्नम और आपका दर्शन क्या है दिव्य रत्न है इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बन गए उत्तमा भक्ति में आ गए। उसी प्रकार से गजेंद्र ने भगवान का दर्शन किया साक्षात वो भी उत्तमा भक्ति के अवस्था में आ गए। और सनक आदि ऋषि शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के मुखार बिंदु से उन्होंने सुना और उनका जीवन पवित्र हो गया वो भी उत्तमा भक्ति में प्रविष्ट हुए। और जगदीश कुमार स्वयं साक्षात भगवान की कृपा उनको प्राप्त हुई। वैकुंठ के द्वार पर जब वो पहुंचे तो भक्ति में उनका परिवर्तन हो गया ज्ञानी से ब्रह्मोपासक से वो अब भक्त बन गए। ठीक है वैकुंठ के द्वार पर गए थे ना वैकुंठ के द्वार पर गए वो अजामिल आता है आप क्या उत्तर है अजामिल
अजामिल से चार में नहीं आता वो तो
चार में नहीं आता क्यों नहीं आता
तो उसने ना अपने बच्चे के लिए पुकारा ना धन के लिए पुकारा ना जितने का ज्ञान था ज्ञान आपके हमारे पुत्रों को
किसको पुकारा है ये अजामिल ने हाँ तो फिर
भगवान
को नहीं पुकारा ये चार सुकृत न केवल उनके संबंध में है जो भगवान के पास जाते हैं पुत्र के पास जाते हैं। लेकिन अजामिल का सौभाग्य ये था क्या था सौभाग्य कि बच्चे का नाम टॉमी बंटी न रख के उसने तो उसकी स्वीकृति की वजह से उसको वो बुद्धि आई कि लड़के का नाम नारायण रखे और कुछ नहीं रखे। ठीक है ना ठीक है अब समाप्त करते हैं समय हो गया। द्रौपदी देवी तो पार्षद है पार्षदा भगवान की तो वो तो इस राधानु का भी तो साधन भक्ति है वो साधन की अवस्था है। द्रौपदी देवी वो तो नित्य सिद्ध है तो उनकी तो सिद्ध अवस्था है वो तो प्रेमा भक्ति की अवस्था में स्थित है।
उनकी जो पूर्वजों की जो कथा है जिसमें उन्होंने देवताओं से वर मांगा था कि ऐसा पति है ऐसा पति
हाँ, ये तो सब लीलाएं हैं ये तो सब लीलाएं हैं
उस समय नित्य से तो नहीं थी ना ये पहले
ये सब लीलाएं होती है
भगवदगीता के साथ करते हैं ज्ञान विज्ञान सही सब जो श्लोक है उसमें ज्ञान और विज्ञान में भेद
संबंधित नहीं है ना अलग विषय है ज्ञान का साक्षात्कार उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है हाँ
तो मध्यम अधिकारी की व्याख्या हुई थी उसमें संतुलित छेदन कहते
हैं बताइए आप शास्त्रादिश्व अनिपुण शास्त्र आदिशु अनिपुण श्रद्धावान ततु मध्यम। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की गौर प्रेमान। आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? अच्छा तत्व है ना। देखो हमारे आचार्य ने कितना सब हमारे लिए छोड़ा है। Mm-hmm.